ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பாக்கி ஜித்தனை ஆனந்த சபையே வாஸ்தவ ஆனந்தனே உத்த ஆனந்தக்கே பிரதிபிம்ப ஆனந்த சுகா ஆபாச அவர் சமுதிர பிந்து ஜெய்ச பிராப்த கருக்கு சௌலுக்கு ஆனந்த ஹோத்தே. ஜஹா சப ஆனந்த ஏகத்துவ பிராப்த கலியா ஓ பரமானந்த சுவாபிகே ஓ அத்விதீய ஓ ஏகே வா ஆனந்த ஒரு ஆனந்த பிராப்த கண்ணவாலா ஏ விபாக வாங்க யா தான் ஆனந்த பிராப்த கண்ணவாலா ஆனந்த ஆனந்த பிராப்த கண்ணவாலா ஏ விபாக ஹே ஜஹா பரமானந்த ஓ ஆனந்த பிராப்த கண்ணவாலா உசே பின்ன கோய் நீ ஆனந்த ஆனந்தி ஏத நீ ஏக ஸ்வரூப வாய் விச்சார ஹே நீ நியூனாதிக கா விச்சார நீ நியூனக்கு அதிக குசே பின்ன குச ஹை நீ ஹோ அஜானக்கு காரண ஏ சலத்தா ஹே தனமே மிலே தன மிலே பிரதிஷ்டா ஒரு கே தன சம்பத்தி ஹோயா பிரதிஷ்டா லோகேஷனா புத்தேஷனா வித்தேஷனா ஹே புத்தேஷனா வித்தேஷனா தோ புத்தேஷனா தோ புத்திர ஆதி கிச்சா தன கிச்சா லோகேஷனா லோகமே சன்மான கியாதி ஏ ஜோ ஏஷனாத்ரய சன்யாசிகார்த்தே சன்யாசிகார்த்த தியாக தியாகமே ஏஷனாத்ரய சன்யாசி சன்யாசே ஏஷனாத்ரய ஜோ சன்யாசி ரே சங்கல்ப கர்த்தே ஏ நீ சாஹே திருட ஹோனே பரி பரமாத்மா பிராப்தி கே சாதன கரனா ஹே ஜப தக்கா ஏஷனா சன்யாச நீ பாயே தோ சன்யாச வேஷ சே சன்யாச நீ ஹோத்தா ஏஷனாத்ரய இச்சா ஹோத்தி ஸ்வாபிக தன பிராப்த ஹோனக்கு பாத ஒரு இச்சா ஹோத்தி தன மில் தோபி லோக சன்மானக்கு இச்சா கோய் சாது மகாத்மா ஏசா ஹோத்தே தனக்கு இச்சா நீ அன்ன இச்சா நீ கி நாம பிரதிஷ்டா இச்சா ரீ படே மாயா இசி பிரக்கார தைவ ஹிசா குணமய மம மாயா தூரத்தையா பூத படே படே சந்த பூத உப்பர படே தபஸ்வி ஹோனக்கு பாத ஃபிர் ஏ மனமே ரீ தோடா குச நாம நாம ரூப மித்யா கஹத்தே படே சரல ஹே தோபி குச பிரதிஷ்டா நாம கே பிச்சமே சூக்ம ரூபே ஸ்தூல ரூபே உப்பர குச நீ லாத்தா ஹே கிந்த பித்தர ரோ சோட தே பிரதிஷ்டா பாவனா வாசனா கா சன்யாச விச்சார வேதாந்த சிரவண கரக்கு ஸ்வரூப சிந்தன கரக்கு ஜகத்தை மித்யாத்வ புத்தி கரே பார் பார் ஏசனா ராஜா மகாராஜா சம்ராட் ஆப கித்தனை பார் ஹுவே அநாதிகால கித்தனை ராஜா மகாராஜா ஹோகே பூத ஜித்தனை மகாராஜா சம்ராட் ஹோகே அநாதிகால கரோட கரோட மகாராஜா சம்ராட் ஹோகே ஓ சம்ராட் ஜோ ஹோகே கே பார் குச்சு உப்பர கே ஆயே ஏ ஜீவ ஹி சம்ராட் ஹே ஜித்தனை சம்ராட் ஹோகே சப முக்த ஹோகே ஜானி ஹோகே கே நீ ஆபி கபி சம்ராட் நீ ஹோகே ஆப கபி ஸ்வர்கே நீ கே சப பூத ஹோகே ஸ்வர்கே பூத கே தேவலோக்கமே பித்தலோக்கமே கந்தர்வலோக்கமே ராஜா மகாராஜா சம்ராட் கே அபிஷா அதிக ஆனந்த ஸ்வர்கமே ஸ்வர்கமே பூத பார் கே கிந்து அபி ஆனக்கு பாத குச்சு பத்தா நீ சலத்தா ஹே ஃபிர் சூ கே பிராரம்பசே ஃபிர் சாஹே ஃபிர் சாஹே ஃபிர் சாஹே ஜித்தனை அத்திருப்த ஹோத்தா ஹே சமாப்த ஹோத்தா ஹே ஜித்தனை சாத்தா ஹே பிராப்த நீ பாத்தா ஹே சாத்தா ஹே பூத பிராப்த நீ பாத்தே கம் ஹி பிராப்த கர்த்தா தோர் பி ஜானத்தா ஹே சாஹனை பர மிலேகா ஏ ஜரூரி நீ மாலும் ஹே நான் ஃபிர் சோடத்தா நீ ஃபிர் சாத்தா மில் ஜாய் ஃபிர் சாத்தா மில் ஜாய் கித்தனை லோக சாஹே பிரதானமந்திரி பண்ணி ராஷ்ட்ரபதி பண்ணி சபலோக நீ சாத்தே ஆப்லோகி சாஹே அப்படின் விஷய நீ கிந்த விஷயமே ஹே பூத லோக சாத்தே ஏசே சாஹனி பசோ நீ பண்ண பாத்தே ஏ வேதாந்த சிரவண கரக்கு ஜகத்தை மித்யாத்வ பார் பார் விச்சார கரே தபி குச்சு தோடே ஏசனா நிவத்தி ஹோ சக்தி ஹே அபி பரமாத்மா கிருபா அந்தகுண சுத்த ஹோ பஜன கண்ண பர பரமாத்மா கிருபா ஹோனே பரி குச்சு சம்பவ ஹோத்தா ஹே நீ தடா கடின ஹே அபி மீமாசா ஜோ கே ஆனந்த கா ஃபல அபி பத்தே சயம் புருஷே யச்சாசா வாதித்தே ச ஏக சயவித் அஸ்மாலோகாத் பிரேத்திய ஏதம் அன்னமயமாத்மானமுபசங்கிராமதி ஏதம் பிராணமயமாத்மானமுபசங்கிராமதி ஏதம் மனோமயமாத்மானமுபசங்கிராமதி ஏதம் விஜ்ஞானமயமாத்மானமுபசங்கிராமதி ஏதம் ஆனந்தமயமாத்மானமுபசங்கிராமதி तदप्य श्लोको भवति स यश्चयम् पुरुषे यश्च सो आदित्य स एक। ये पुरुष में जो है चिन्मात्र चेतन जो आदित्य में है वो एक है। अन्न में एक अंदर जो तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्रविशत का आकाश आदि भूत भूत सृष्टि करके अन्न में आदि कोष बना करके जो उसमें प्रविष्ट हुआ पुरुष में है। और जो आदित्य में है जो परमानंद रूप श्रुति आदित्य में अंदर ब्रह्म है सबके अंदर जो परमात्मा ब्रह्म है जो पुरुष में वो एक है जो कि यहाँ प्रविष्ट हुआ वही सबके अंदर है। अंतर्यामी ब्राह्मण में सबके अंदर स्थित है सबको नियमन करने वाले ए सत आत्मा अंतर्यामी अमृत अंतर्यामी ब्राह्मण बृहदारण्यक में कहा गया। जो अंतर्यामी सूर्य चंद्र पृथ्वी जल सबके अंदर है वही तुम हो यही तुम्हारा आत्मा है यही आनंद है यही ब्रह्मा सब कुछ है तो ही सब कुछ है। घटाकाश घट जब तक है नाम होता है घटाकाश महाकाश से भिन्न कभी हुआ नहीं। और घट नष्ट हो गया तो महाकाश घटाकाश जिस प्रकार एक है इसी प्रकार पुरुष उपाधि के कारण अलग होता है उपाधि रहित तो ब्रह्म से अभिन्न है उपाधि होते हुए भी ब्रह्म से अलग नहीं होता है अज्ञान के कारण भिन्न मानता है तो ये एक ही है यही आदित्य में वही एक है एवं वित्त ऐसा जो जान लेता है साक्षात्कार कर लेता है एवं वित्त एवं व्यक्ति अहम अस्मि परम ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है तो अस्मा लोकात् प्रेत्य जब तक प्रारंभ है तब तक ज्ञान होने के बाद उसको कहते जीवन मुक्त जीवन का थे जीते जीता हुआ मुक्त है। ज्ञान हो गया जब अपने को स्वरूप मानता है मैं नित्य पूर्ण परिपूर्ण ब्रह्म हूं परिपूर्ण ब्रह्म हूं उसी ब्रह्म में वास्तव संसार जन्म संसार कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार सर्प भय से डर रहे थे रज्जु को देख लिया क्या निश्चय होता है ये तीनों काल में सर्प है ही नहीं। ये कोई नहीं कहता कि ये अभी तो रस्सी है अभी सर्प नहीं पहले तो था ऐसा होता है तो सर्प कभी नहीं रस्सी ही है अभी भी रस्सी पहले भी रस्सी थी आगे भी रस्सी है। इसी प्रकार जिसको ज्ञान हो जाता है ये नहीं सोचता है कि मैं अभी तक बद्ध था संसार था अभी मुक्त हो गया ब्रह्म ज्ञान मुझे हो गया मैं अभी ज्ञानी हो गया मुक्त हो गया ऐसा नहीं। ऐसा यदि है तो ज्ञान हुआ नहीं। यदि मैं अहम अस्मि ब्रह्म साक्षात्कार ऐसे हो गया तो ब्रह्म में असंग निर्विशेष पर ब्रह्म के साथ माया माया के कार्य संसार का संबंध कब होता है ज्ञान के पहले हुआ था अज्ञान अवस्था में हुआ था संबंध अज्ञान अवस्था में भी संबंध नहीं। आपको भ्रांति होगी मरुभूमि में जल है भ्रांति काल में मरुभूमि में जल का संबंध हो जाएगा क्या भ्रम होने पर भी जल का संबंध है ही नहीं। इसी प्रकार अज्ञानी अपने को जन्म मरने वाला संसारी जितने कुछ मानने पर भी संसार कल्पित होने के कारण अध्यस्त धर्म का संबंध अधिष्ठान के साथ कभी नहीं होता है। आरोपित वस्तु है ही नहीं उसका संबंध कैसे होगा। संबंध यदि कल्पना करते तो उसको कहते आध्यासिक संबंध आरोपित संबंध वास्तव संबंध है ही नहीं। अन्य धर्म को अन्य में आरोप करते इसको कहते अध्यास। लौह पिंड है गर्म कर दिया अग्नि में लाल हो गया इसको अग्नि कहते। लौह एक अलग अग्नि एक अलग है दोनों का एकत्र भ्रम हुआ इसको कहते हैं धर्मी अध्यास। धर्मी किसको कहते जिसमें धर्म हो। लौह में वर्तुलत्व तो धर्म गोलाकार है अग्नि में दाहकत्व तो धर्म है दो धर्मी का एकत्र भ्रम होता है उसको कोई लौह कहता है कोई अग्नि कहता है। तो ये जो एकत्व भ्रम हुआ लौह अलग अग्नि अलग दोनों का एकत्व हो गया इसको कहते धर्मी अध्यास दो धर्मी का एकत्व भ्रम। दोनों का एकत्व भ्रम होने से धर्मी अध्यास होने से धर्माध्यास होता है। लौह का धर्म वर्तुलत्व अग्नि में दिखेगा अग्नि का दाहकत्व लौह में लौह अयोधति कहते। दोनों धर्मी का एकत्व भ्रम होने से परस्पर धर्म अन्य धर्माध्यास हुआ। इसी प्रकार अंतकरण बुद्धि चेतन अलग है बुद्धि अलग चेतना अलग किंतु चेतन का प्रतिबिंब उसमें दिखने से चिदाभास के संबंध से बुद्धि चेतन जैसे लगती है। तो बुद्धि और चेतन दोनों अलग नहीं, बुद्धि चेतन लगती है। दोनों धर्मी का, एक बुद्धि धर्मी और एक चेतनात्मा धर्मी, दोनों का एकत्र भ्रम हुआ। यद्यपि आत्मा में कोई धर्म है ही नहीं, उसको धर्मी नहीं कहना चाहिए क्योंकि धर्म नहीं। वास्तव धर्म नहीं होने पर भी कल्पित धर्म है, आत्मा में धर्म है ही नहीं किंतु कल्पना करते उसमें चैतन्य रूप धर्म है, ज्ञानत्व रूप धर्म, धर्म कल्पना करते हैं। तो धर्मी कल्पना कल्पित धर्म को लेकर आत्मा एक धर्मी बुद्धि एक धर्मी दोनों का एकत्व भ्रम होने से धर्माध्यास होता है। बुद्धि का धर्म आत्मा में, आत्मा का धर्म बुद्धि में, आत्मा का चैतन्य बुद्धि में दिखता है, बुद्धि में अंतकरण में सुख दुख कर्तृत्व आदि वो आत्मा में दिखता है। कहते अहम चेतना चेतनो हम करोमि, कौन से दोनों धर्मी का एकत्व अध्यास होने से परस्पर धर्म का अध्यास होता है, धर्माध्यास। यहां क्या है, लौह और अग्नि दोनों अलग आपने देखा, लौह को अलग देखा अग्नि अलग देखा, तो लौह अग्नि एकत्व होने पर भी समझ में आ जाता है दो अलग पदार्थ एक साथ दिखता है। लौह लाल हो जान से अग्नि ये एकत्व भ्रम हुआ, एक नहीं अलग अलग है। किंतु बुद्धि में जो चेतन का अध्यास होता है अनादिकाल से बुद्धि में ही चिदाभास, जब बुद्धि को देखेंगे चिदाभास विशिष्ट ही दिखती है, और चिदाभास कहां दिखेगा, बुद्धि में अंतकरण में ही है। ये दोनों कभी अलग अलग नहीं देखा, चिदाभास के बिना कहीं बुद्धि को देखा होता तो कहते कि ये बुद्धि अलग चिदाभास अलग चेतन अलग, जब चिदाभास को देखेंगे बुद्धि को देखेंगे उसमें चिदाभास ही, और चिदाभास कहां दिखेगा, बुद्धि में। इसे दोनों का एकत्व भ्रम ये होता है धर्मी अध्यास तादात्म अध्यास एकत्व भ्रम। इसको कहते ग्रंथि गांठ, अनादिकाल से चित जड़ चेतन अचेतन, चित होता है सत असंग, बुद्धि असत मिथ्या, सत्यानते मिथुनिकृत, एक सत्य एक मिथ्या दोनों विलक्षण है, एक अधिष्ठान सत्य एक मिथ्या अध्यस्त, अध्यस्त वस्तु का संबंध सत्य के साथ हो नहीं सकता है, जिस प्रकार मरुभूमि के साथ जल का संबंध कल्पित जल का संबंध ही नहीं। दोनों का जो एकत्व भ्रम है वो अनादिकाल से है, उसकी निवृत्ति से नहीं हो पाती क्योंकि बुद्धि अलग चेतन अलग इसे देखा नहीं। दोनों के एकत्व भ्रम उनसे बुद्धि के कंपन से सुख दुख आत्मा में आरोप करके कहते अहम सुखी अहम दुखी, बुद्धि आत्मा के चैतन्य आरोप करके बुद्धि को चेतन मान लेते हैं, इसे जो बुद्धि है उसको आत्मा मान लेते हैं। बहुत लोग विज्ञानवादी बौद्ध मत बुद्धि को आत्मा कहते हैं क्योंकि बुद्धि में चेतावास दिखने से अलग आत्मा नहीं दिखता है तो बुद्धि को आत्मा मानते। लोक में भी बहुत लोग कहते मैं निश्चय करने वाला तो मैं ही हूं, मैं ही चेतन हूं, निश्चय बुद्धि से होती है। ये दोनों को समझना, समझने की प्रक्रिया तो इतने शास्त्र प्रमाणित है, बुद्धि की उत्पत्ति है। अरे बुद्धि मेरी ये आपको मालूम होता है ना, नहीं मैं हमारी बुद्धि, आपकी बुद्धि को आप जानते हो, आपकी बुद्धि को आप जानते हो तो बुद्धि को जानने वाला बुद्धि है क्या, बुद्धि को जानने वाला माला को देखने वाले माला से भिन्न है। मैं जिसको जान मैं जो मेरा है वो मेरे से भिन्न है, बुद्धि मेरी है तो बुद्धि मेरे से भिन्न है, मैं बुद्धि नहीं हूं, जो मेरा है वो मैं नहीं मेरे उसे भिन्न, तो बुद्धि मेरी है तो मैं बुद्धि नहीं हूं, बुद्धि को मैं जानता हूं तो मैं बुद्धि नहीं हूं, तो बुद्धि के साक्षी है। जो बुद्धि को जानने वाला अंतकोण को जानने वाला वही सुख दुख को जानता है, सुख दुख को जो जानता है वही चेतन है वही आप है। हम जिसको देखते हैं ये मेरे से भिन्न है, ये जो रूप है पुष्प में रूप है ये आप देखते हो, ये रूप आप है, ये रूप आप में है, दृश्य पदार्थ हम नहीं, हमारा धर्म भी नहीं, जिसको हम देखते हो हम में नहीं है, सुख दुख को हम जानते हैं ऐसे सुख दुख हम है हमारा धर्म है, उसको जानते हैं इसलिए हमारा धर्म भी नहीं है। तो आप में सुख है या दुख है, दोनों नहीं है आत्मा में, किंतु दोनों को जबरदस्ती खींच करके अहम सुखी अहम दुखी यही समझ करके आत्मस्वरूप चिंतन करने पर वेदांत श्रवण करके तभी वासना की कुछ थोड़ी थोड़ी निवृत्ति हो तभी सन्मार्ग की प्रवृत्ति होती है। नहीं तो वासना निवृत्ति नहीं हो तत्व को नहीं समझे बड़ा कठिन है इच्छा को छोड़ देना। इच्छा सब छोड़ दे कर छोड़ देना सरल है कहना, वासना की निवृत्ति कैसे छूट जाएगी। इच्छा को छोड़ने के लिए विषय क्या है, आत्मा अनात्मा विवेक, इसलिए बिनु सत्संग भक्ति न हो। भक्ति होने के लिए भक्ति खाली इसे शांति थोड़ा जप कर दिया नहीं, क्या जप मंत्र जप करने के लिए क्या भक्ति, पंचम भजन मंत्र जप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन ये वेद प्रकाश, मेरा मंत्र जप करे उसमें तुलसीदास कर दे दृढ़ विश्वास, खाली जप को भक्ति नहीं उसमें तो दे दिया दृढ़ विश्वास, केवल विश्वास नहीं दृढ़ विश्वास। विश्वास कब होता है, मेरा भक्त कहा न आशा करे तो कहा विश्वास, कहता मैं भगवान का भक्त और आशा करता इच्छा करता है तो मेरे ऊपर विश्वास है, तो विश्वास किसका है मानिए, जो आशा नहीं करता इच्छा नहीं करता है निर्वासन इच्छा रहित तो हो गया उसका विश्वास है। और दृढ़ विश्वास मतलब और दृढ़ अंदर प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनगता, सब कामना का त्याग कर दे कोई यदि जप करता है तो वो पंचम भजन है। कब सारे आशा विश्वास के दृढ़ विश्वास के साथ बिल्कुल आशा का त्याग करके इच्छा का त्याग करके मेरा मंत्र जप करता है तो वो पंचम भक्ति है, सरल है ना। ये बोलते आपने कठिन बना दिया, भक्ति तो सरल थी। तो तुलसीदास ने कहा है, मैं देखा दिया, देखो तुलसीदास ने कहा पंचम भजन तो जप है किंतु उसके साथ जोड़ा है दृढ़ विश्वास के साथ। अरे विश्वास का अर्थ भी करते हैं, जब मेरा भक्त कहता है यदि इच्छा करता है तो मेरे ऊपर कहां विश्वास है, भगवान की भक्त है फिर इच्छा करता है मुझे अमुक मिल जाए तो भगवान ऊपर कहां विश्वास है, तो विश्वास किसको कहेंगे, जिसका जिसकी कोई इच्छा नहीं हो, जिसकी कोई इच्छा नहीं वो मंत्र जप करे तो पंचम भक्ति होगी। दृढ़ विश्वास के साथ बिल्कुल इच्छा को छोड़ करके मंत्र जप करे तो इच्छा की निवृत्ति चाहिए, भक्ति करो योग करो ज्ञान मार्ग में जाओ, इच्छा की निवृत्ति वासना की निवृत्ति होने से ही आनंद है परमानंद की प्राप्ति है। वासना निवृत्ति के लिए ये थोड़ा संसार का स्वरूप चिंतन करे, ब्रह्म स्वरूप चिंतन करे तभी होगा। अभी इसमें कहा जो जानता है अस्मालोकात प्रेत्य, तो जानने वाला मरेगा ना नहीं मरेगा, आत्म प्रारब्ध समाप्त हो तो समाप्त हो जाएगा। प्रारब्ध जब तक तो ज्ञान हो गया, ज्ञान होते अज्ञानी की निवृत्ति है, अभी शंका करते अज्ञानी की निवृत्ति होगी तो अज्ञान का कार्य कर्म हो क्षंत चाष्य कर्माणी तस्वीन दृष्टि बराबर है, और कर्म समाप्त हो जाएगा तो शरीर भी समाप्त हो जाना चाहिए, इसलिए कहते शरीर रहता है तो प्रारब्ध कर्म रहता है, प्रारब्ध कर्म रहेगा, यदि प्रारब्ध कर्म रहेगा अज्ञान कारण चला गया तो प्रारब्ध कर्म कैसे रहेगा, ऐसे कहते प्रारब्ध कर्म के लिए कारणीभूत थोड़े अज्ञान लेस अविद्या भी रहती है, वो कब समाप्त होगी, जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाएगा भूयस चांते विश्व माया निवृत्ति, अंत में प्रारब्ध समाप्त होने के बाद भूय फिर सारे माया की निवृत्ति होती है, और तभी प्राप्त करता है विदेह कैवल्य को, किसको प्राप्त करेगा, विदेह मुक्ति, विदेह कैवल्य, विदेह मुक्ति, वो प्रारब्ध समाप्त के बाद मुख्य मुक्ति तो हुई है, किन्तु ज्ञान होते ही वो अपने को देखता है मैं मुक्त हूं। और जब प्रारब्ध कर्म भी कहा गया, ज्ञानी मानेगा मेरा प्रारब्ध कर्म है, ज्ञानी अपने को क्या मानता है, परिपूर्ण ब्रह्म, परिपूर्ण ब्रह्म का प्रारब्ध होता है क्या, ज्ञानी जिसको अहम मानता है उसमें प्रारब्ध कर्म है, ज्ञानी महीन नहीं मानता है मेरा प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध कौन कहता है, जब अज्ञान लोग पूछते हैं श्रुति कहती तद विज्ञानार्थम गुरु में अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, अब ब्रह्म ज्ञान हो गया तो अज्ञान नष्ट हो गया, कर्म समाप्त हो गया, शरीर नहीं रहेगा, तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु कहां मिलेगा उपदेश करने के लिए, और ज्ञानी यदि उपदेश करते हैं, भगवान ही उपदेश करते थे, ज्ञानी उपदेश करते हैं, तो यदि उपदेश करते उनको द्वैत दिखता है, शिष्य नहीं दिखा तो उपदेश किसे करेंगे, भोजन करेंगे या नहीं, ज्ञानी रास्ता में चलेंगे या नहीं, शिष्य को देख सकते हैं नहीं देख सकते, नहीं देखे हैं तो नहीं सुनेंगे, शिष्य का प्रश्न भी नहीं सुनेंगे, उत्तर क्या देंगे? और नहीं देखे तो उपदेश कैसे करेंगे? तो देखते हैं, सुनते हैं, खाते भी है, खाते ना नहीं, अच्छा खाते खाते, पेट भर के बहुत खा लेते हैं, सब का ज्ञान हो गया तो कोई कम खाएगा, खाते हैं। सब यदि व्यवहार करते हैं तो उनको ज्ञान हुआ कैसे निश्चय होगा? तो उसको समझाते कहते तो अज्ञानी जो पूछता है, आत्मज्ञानी जिसको मेरा स्वरूप मानता है उसको तो अज्ञानी नहीं समझ पाता है, वो तो शरीर को देखता है, शरीर के धर्म को लेकर प्रश्न करता है, ये उपदेश कैसे करते, भोजन कैसे करते, भिक्षाटन करते, शिष्य को डांटते क्यों? कभी ज्ञानी शिष्य ताड़न करेगा? आचार्य क्या धर्म है? शिष्य को ताड़न, शिष्य के भक्त के अहंकार को नष्ट करना। भगवान जी से अहंकार को पुष्ट नहीं करते भक्त, भक्त का भक्त के अहंकार को भगवान पुष्ट नहीं करेंगे, अहंकार को नष्ट करेंगे। इसे आचार्य गुरु भी अहंकार को पुष्ट नहीं करते, अहंकार को ठेस पहुंचाने से उसका कल्याण होता है। तो देखते हैं शिष्य ताड़न भी करते हैं, तो फिर उसको उत्तर देना पड़ता है, ये प्रारब्ध कर्म अज्ञानी जन प्रबोधार्थम, अज्ञानी को बताने के लिए प्रारब्ध नाम आया। उनको बताते जो अपना स्वरूप उसको तो अज्ञानी समझ नहीं पाता, देहादि को देखता है, देहादि को देखता है तो देहादि का देह का प्रारब्ध है। देह बना किस कर्म से? जिस कर्म से देह बना वो कर्म का नाम प्रारब्ध। कुछ कर्म भोग हो गया और कुछ कर्म बाकी है, जब तो वो कर्म है तब तो देह रहेगा। देह जब तो रहेगा, पुण्य पाप कर्म फल भोग होगा, देह में सुख दुख भोग होगा, शरीर में भोग होगा ना नहीं, हाँ ये सब रहेगा चलेगा। उपदेश करता है, व्यवहार करता है, खाता है, सब कुछ करता है जब तक प्रारब्ध कर्म है। और ज्ञानी मानेगा मेरा प्रारब्ध, आत्मा का प्रारब्ध है या देह का प्रारब्ध है? देह आत्मा ज्ञानी मानता है, मैं ही देह या मेरा देह मानेगा? मेरा मानेगा देह, मेरा देह क्या है? ज्ञानी आत्मा सर्वव्यापक आत्मा है, आपका सर्व सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक आत्मा का प्रतिबिंब सबके अंतकरण में है। कौन सा अंतकरण में आपका प्रतिबिंब है? कौन सा प्रतिबिंब आपका स्वरूप है? सबका, सारे प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप क्या है? बिंब, कितने बिंब है? एक बिंब तो है, किंतु वो बिंब जो वास्तव स्वरूप, ये बहुत प्रतिबिंब के, किस प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप है ब्रह्म? सबका वास्तव स्वरूप एक होगा, अनेक जीव का वास्तव स्वरूप एक होगा, अनेक होगा, हाँ इसको विचार करना। अनेक प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप एक बिंब है, और आपका प्रतिबिंब कहाँ है? हैं? आप प्रतिबिंब अपने को मानते हैं, बिंब मानते हो, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ है? सबके अंदर है। तो आपके प्रतिबिंब मानकर कहते हमारे कहीं प्रतिबिंब नहीं, क्योंकि हम ही तो प्रतिबिंब है। आपका प्रतिबिंब कहाँ है? कहीं नहीं है, क्योंकि हम प्रतिबिंब है। अपने को जो प्रतिबिंब मान बैठे, प्रतिबिंब नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब कुछ पदार्थ है ही नहीं, बिंब ही दर्पण के माध्यम से दिखता है, अंतकरण के माध्यम से आपका परिपूर्ण आनंद स्वरूप ही दिखता है, वो बिंब ही आप है, प्रतिबिंब कोई अलग होता ही नहीं है। दर्पण प्रतिबिंब देखते समय अलग होता है क्या? कुछ दर्पण मुख कुछ रहता है, कुछ एक प्रतिशत मुख का दर्पण रहता है, खाली दिखता है, अलग नहीं है। इसलिए यही समझ करके सर्वत्र एक चेतन का प्रतिबिंब है, तात्विक परमार्थिक एक है, और सारे कुछ माया से अलग भेद दिखते उपाधि के कारण, औपाधि का भेद होने पर भी जैसे चंद्र एक है, औपाधि का अनेक भेद हो गया, एक बिंब चेतन है, औपाधि का अनेक चिदाभास हो गए। ये चिदाभास में अहम बुद्धि छोड़ करके शुद्ध चेतन बिंब रूप में हूं, शुद्ध चिन्ह मात्र, यही करके रहने से जगत को सपन जैसे विचार करते धीरे 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 वासना को छोड़ना पड़ता है। ये मिथ्या प्रपंच, और ये भी सोचना प्रारब्ध में जितने इसी जन्म में जितने प्रारब्ध इतने मिलेगा, कर्म फल सुख दुख भोग मिलेगा, अधिक नहीं होगा, कम नहीं होगा। अधिक सोचने से अधिक मिल जाएगा, नहीं सोचने से आपका कर्म फल आपको भोगना पड़ेगा, नहीं मिलेगा। दुख कोई भोगना नहीं चाहता है तो भोगना पड़ता है ना? नहीं, कोई दूसरे दुख नहीं देगा, अपने आप को दुख नहीं भोगना पड़ता? कोई धक्का देकर नहीं गिराएगा तो अपने आप को भी गिरता है, नहीं गिरता है? अपने आप अब जब कर्म आया अपने आप गिरा किसको दोष देंगे, होता है बहुत लोग ऐसा होता है, अपने कर्म पर भोगना पड़ता है, इच्छा नहीं होने पर भी पाप का हो पुण्य का हो भोगना पड़ेगा, व्यर्थ उसके लिए सोच करके जीवन को बर्बाद करता है। इसलिए ये जो इस जन्म में सुख मिले, ख्याति मिले, धन मिले, ये ख्याति यदि आपको जितने मिलने हैं इतने मिलेगी, अधिक चाहने पर अधिक मिल जाएगी। ये यदि निश्चय करे, बार बार विचार करे, तो ये ख्याति इच्छा जो होती है स्वाभाविक प्रतिष्ठा इच्छा, उसको छोड़ना है। प्रतिष्ठा यदि आपको मिली है जितने कर्म इतने मिलेगा, नहीं तो नहीं। अच्छा मिल भी जाए तो क्या होगा, लेकर क्या जाना है, पहले कितने प्रतिष्ठित हो गए आपको पता है, पहले कहीं बड़े प्रतिष्ठित थे, अभी कुछ मालूम है, अभी चाहने पर मिल जाएगी प्रतिष्ठा सबको नहीं, इसलिए ये इच्छा ही दुख देने वाला है। ये सब छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित होना चाहिए, इसको अभी इसके बताएंगे। ये ब्रह्मास्मि माला का एक श्लोक याद हो गया था ना, बोल दो सो, अभी सब बहुत लोग आए, किसके याद हो बोलो, नहीं नहीं रुक मिल करे, मंगलम मंगला तथा आगे श्लोक, नमस्कार कार्यो नमस्कृति नमस्करण साध्यं यत् सर्वं ब्रह्मास्मि नम्रत। आगे अहम् ब्रह्मा ब्रह्म महद् ब्रह्मा महत् तथा इदं ब्रह्मानिदं ब्रह्म सर्वं ब्रह्मास्मि सर्वतः कोऽहं कस्त्वं किमेतच्च न जानेऽहं कथञ्चन अवश्यमेव जाने तु सर्वं ब्रह्मास्मि सर्वतः राहोर्ग्रासाद् विनिर्मुक्तो यथा चंद्रो विनिर्मलः मनो मे निर्मलं तज्वज् ज्ञातं ब्रह्मास्मि निर्मलं विवेच्य भूतिपूर्णं तद् विचार्य चित्तिपूर्णकं विलोक्यानन्दपूर्णं तज् ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति।